बेहद सेवा के निमित्त दिव्य बुद्धिधारी बाबा के महायज्ञ में अथक अविरत रूप से सेवा देने वाले शांत चित्त सादगी की मूरत आदरणीय शिलु दीदी जी का हम सब जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं। साकारी आकारी निराकारी तीनों से पालना प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं लेकिन परम सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ और दीदी जी की यही आश रहती है कि जैसे हमने संगम युग पर साकार आकार निराकार का अनुभव किया, पालना में पले पल रहे हैं पलते रहेंगे, वैसे सभी ब्रह्मावस्थ ब्राह्मण बच्चे भी बाबा से यह अनुभव करते रहे। और इसी संकल्प के आधार से दीदी जी ने बहुत अच्छा विषय चुना जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है और वो विषय है साकारी आकारी निराकारी की पालना जो दीदी ने स्वयं ली है और हम सभी को भी उनके वाणी से अनुभव होगा ही। दीदी जी का परिचय इस तरह से है, लौकिक पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी करके पढ़ाई पढ़ते समय ही आपको बाबा के ज्ञान की प्राप्ति हुई। ईश्वरीय ज्ञान जीवन में अपनाते हुए 60 साल से भी ज्यादा समय बीत गया। साकार बाबा की पालना में पले और वही ली हुई पालना दूसरों को देने का आपका संकल्प रहता है और आपको ये शुभ भावना शुभ कामना और विधि भी बहुत अच्छी तरह से अवगत है। देश विदेश में करीब 90 देशों से भी ज्यादा सफर करके आपने सेवाएं की है और बाबा के सेवा का विशाल वटवृक्ष निर्माण किया। टीवी और मीडिया के माध्यम द्वारा विभिन्न चैनल्स पर आपके प्रोग्राम आते रहते हैं और संसार की आत्माएं उन्हें बेहद पसंद करती हैं। वर्तमान समय एजुकेशन विंग के हेडक्वार्टर के आप कोऑर्डिनेटर हैं, तो आदरणीय सम्माननीय दीदी जी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि साकारी आकारी निराकारी की पालना कैसी हो इस बात से हमें अनुभव भी कराए और अवगत भी कराए। ओम शांति।
ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति। माताएं ओम शांति। ये जनवरी का मास ब्रह्मा बाबा को समर्पित है। ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं जो 18 जनवरी 1969 में अव्यक्त हुए और इस बार 18 जनवरी पर हम उनका 57वां अव्यक्ति दिवस मनाएंगे। 57 वर्ष 56 इयर्स पहले 1969 में ब्रह्मा बाबा हमसे अव्यक्त हो गए, संपूर्णता को प्राप्त किया। एक बीज उन्होंने रोपा था जिससे यज्ञ की स्थापना हुई। अपना तन मन धन इस यज्ञ में समर्पित किया और एक विशाल वट वृक्ष के रूप में आज हम उसको देख रहे हैं। जो देश विदेश 140 देशों में बाबा के सेवा केंद्र हैं, 1936 में यह कार्य आरंभ हुआ और आज 2026 है। तो 90 साल वाला हम ये यज्ञ का इतिहास हम मनाएंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए 57 ईयर्स हुए, 57 साल वा हम अव्यक्ति दिवस मनाएंगे। तो 33 वर्ष साकार बाबा की पालना ली और 1969 से लेकर 2017 तक अव्यक्त बाप दादा की पालना ली, 69 से 2017। तो साकार बाबा की पालना तो 33 वर्ष मिली और उसके बाद 69 से लेकर मानो 30 और 26 कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए, 69 से लेकर 2017 तक कितने वर्ष हो गए जी, 48। तो 48 वर्ष हम सब ने अव्यक्त बाप दादा की पालना ली। तो साकारी पालना, अव्यक्ति पालना, और अभी हम कहेंगे ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, सूक्ष्म वतन निवासी है, शिव बाबा परम धाम निवासी है और हम उनके बच्चे इस साकार लोक में हैं। तो साकारी आकारी पालना देकर ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए और हमें यही प्रेरणा दी कि अभी आप बच्चों को भी अव्यक्ति और निराकारी बनना है और उसके लिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। इसलिए कहते हैं सी फादर एंड फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, उन्होंने जो किया और कैसे 33 वर्षों में अव्यक्त हो गए और हमारी दादियों ने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया और आज वो भी अव्यक्त हो गए। अब हम बच्चों का क्या फर्ज बनता है कि हम उनके समान बने। तो अभी तो कहेंगे निराकारी पालना है, पर मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने साकार की भी पालना ली, अव्यक्त बाप दादा की भी पालना ली और अभी तो मधुबन स्वर्गाश्रम में रहकर निराकारी बाप दादा की भी पालना ले रहे हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो साकार की जो पालना मिली वो हमारी दादियां तो वर्णन करती ही है, क्योंकि यज्ञ में 14 साल उनके साथ रहे। दादियों ने जो अनुभव उस यज्ञ में किया वो तो हमने नहीं किया, क्योंकि 1960 में हम ज्ञान में आए और उस समय मुंबई में पढ़ाई करते थे, स्कूल में पढ़ते थे। 1960 की ये बात है, 59-60 कुछ। और ये भी मेरा सौभाग्य था कि सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की गोद ली जबकि ये ज्ञान मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मेरी लौकिक माता जी को ये ज्ञान मिला था 58 में, तब तो मैं 10 साल की थी, लेकिन 59 दिसंबर और जनवरी 60 में ब्रह्मा बाबा बॉम्बे आए थे। तो मुंबई में हर साल बाबा आते थे, हर साल, क्योंकि माउंट आबू में बहुत ठंडी होती थी, तो डॉक्टर की एडवाइस पर कि कोई गर्म स्थान पर आप जाएं इन 3 महीनों के लिए, दिसंबर जनवरी फरवरी 0 डिग्री तक चला जाता था माउंट आबू में टेम्परेचर, और उससे भी कम। अभी भी कुछ दिन पहले -1 डिग्री था माउंट आबू में, यहाँ आबू रोड में 10 डिग्री का फर्क है माउंट आबू और आबू रोड में। कई ऊपर आते हैं उनको पता नहीं होता है, कहते हैं शांतिवन में तो बहुत अच्छा मौसम है, और ऊपर आकर के ठिठुरते हैं, गर्म कपड़े इतने लाते नहीं हैं। परंतु वहाँ की विशेषता है माउंट आबू की कि रात को तो बहुत ठंडी होती है, सवेरे भी जब तक धूप निकले तब तक ठंडी होती है, पर जैसे धूप निकली तो सूरज देवता तो बहुत अच्छी तरह से चमकने लगता है और हम ठंडी भूल जाते हैं। ऐसे भी है, लेकिन कमरों में तो ठंडी होती ही है। तो शांतिवन में आकर के थोड़ा रिलीफ मिलता है, हम तो ये कहेंगे। अभी भी सोचा शॉल पहनेंगे, लेकिन जैसे ही आए तो गर्मी लगने लगी तो देखो फर्क तो बहुत है। तो साकार बाबा भी मुंबई में आते थे दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीना मुंबई में रहते थे। उनके लिए खास एक फ्लैट किराए पर लेते थे जिसमें बड़ा हॉल होता था, और 3 महीने के लिए वो फ्लैट लेते थे बाबा के लिए। सेंटर के नज़दीक ही कोई फ्लैट होता था, ज़्यादा सेंटर्स तो थे नहीं बॉम्बे में, एक साइंस सेंटर था और दूसरा कोलाबा के तरफ रीगल सिनेमा, क्योंकि मुंबई के बहुत सारे भाई बहने बैठे होंगे यहाँ, वहाँ पर था। तो मेरी लौकिक माता जी मुझे बाबा के पास ले गए। मैंने बाबा को पहले कभी नहीं देखा था, है ना, इस क्लब में कोर्स वोर्स क्या होता है वो भी कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरी माँ जरूर जाती थी कुछ समय से। तो ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण बाबा ने कुछ माताओं को दिया, तो मेरी लौकिक माँ को भी निमंत्रण मिला और वो मुझे ले गई। और उस समय ब्रह्मा भोजन का रूप ऐसे नहीं था जैसे अभी है, अभी तो सबको परोस कर मिलता है, और कोई बड़ी बहन यही कहती है कि अभी हम सब बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे बस, और ब्रह्मा भोजन शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण, रोबी बाबा द्वारा निमंत्रण, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, बड़ा भाग्य था कि ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा भोजन पर निमंत्रण दिया था। तो बाबा भी नीचे बैठते थे, कोई टेबल कुर्सियां नहीं थी, सब नीचे बैठते थे, तो नीचे हॉल में बाबा भी बैठे थे और हम सब, मैं समझती हूँ, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में करीब, कोई ज़्यादा भी बहुत नहीं, 50 माताएं थी, 50 से ज़्यादा नहीं थे। और मैं अपनी माँ के साथ, तब मैं 12 साल की थी, तो गई ब्रह्मा भोजन पर। तो हमने देखा कैसे बाबा ने पालना की, तो सब बैठे लेकिन एक एक करके सब बाबा के पास आते थे, बाबा के सामने बैठते थे, और बाबा से दृष्टि लेते थे और फिर बाबा की गोद में सिर रखते थे। बाबा भी नीचे बैठते थे और बाबा की गोद में सिर रखते थे, बाबा पीठ थपथपाते थे और फिर कोई न कोई वरदान देते थे, वरदान देते थे और वरदान दे करके फिर मुख में गिट्टी डालते थे, भोजन रोटी और सब्जी या जो कुछ भी वो बाबा मुख में डालते थे। तो ये हर एक को करते थे। अब मैं देख रही थी, मैं तो सोचा पता नहीं मैं इतनी छोटी हूँ, 11-12 साल की हूँ, मुझे बाबा गोद में लेंगे या नहीं लेंगे, पता नहीं था ना कुछ भी। तो मेरी लौकिक माँ का तो जैसे टर्न पूरा हुआ तो मैं पास में बैठी थी तो मैंने संकोच किया, मुझे वो भी याद है कि मैं उठूँ और बाबा के पास जाऊँ, कहीं ये तो नहीं कहेंगे बच्चों को नहीं जाना है, हो सकता है। तो मैं उठी नहीं, तो बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची आओ, आओ बच्ची। और जैसे ही बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो मैं वहां से दौड़ करके, जैसे नहीं कोई चुंबक सुई को खींचता है, ऐसा मेरा अनुभव था कि मैं उठ करके भाग करके एकदम बाबा को चिपक गई। अब हालांकि मैं जानती नहीं थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था, चिपक गई और फिर बाबा की गोद में सिर रखा और बाबा ने पीठ थपथपाकर पहला वरदान दिया। जानती भी नहीं हूँ, मुझे यही लगा मेरी लौकिक माँ का गुरु है, यही समझा था। परंतु बाबा तो कहते मैं तो गुरु हूँ नहीं, पाँव भी नहीं पड़ने देते थे। तो बाबा ने जैसे कहा आओ बच्ची, तो वो जो बच्ची कहा ये एक चुंबकीय आकर्षण था और मैं बाबा की गोद में जैसे गई और बाबा ने उसी समय एक वरदान दिया, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, ये बाबा ने वरदान दिया। तो बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई और ये जैसे ही बाबा ने कहा बस वो अलौकिक जन्म हो गया। तो मैं तो कई बार भाई बहनों से पूछती हूँ,
सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता सतयुग में तुमको आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
तो मैं कई भाई बहनों से पूछती हूँ, आपका अलौकिक जन्म कैसे हुआ, कब हुआ? तो अपना अपना अनुभव सब सुनाते हैं, हर एक सुना सकता है मेरा अलौकिक जन्म कैसे हुआ। तो कोई कहेगा मुझे दादी की दृष्टि मिली, कोई कहेगा मैंने कोर्स किया, कोई कहेगा मैंने एग्जीबिशन देखी, और मतलब हर एक का अपना अपना अनुभव होगा कि कैसे अलौकिक जन्म लिया। लेकिन मैं उस नशे से कहती हूँ कि मैंने ब्रह्मा बाबा की गोद में अलौकिक जन्म लिया। तो ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है। फिर तो मैं मधुबन में आई, और ये करीब 1961 में मैं मधुबन में आई, और तब तक तो मैं रोज़ सेंटर पर जाती थी, क्लास करती थी, मुरली सुनती थी, फिर स्कूल जाती थी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में, पहले सेंटर पर मुरली सुनना और फिर स्कूल जाना। तो यूनिफॉर्म ही पहन के जाते थे, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी मुंबई में कॉन्वेंट स्कूल में। तो इंग्लिश तो अच्छी थी हमारी, तो बाबा के सामने हमने एक इंग्लिश में एक पोइट्री सुनाई, एक्शन सॉन्ग जैसा, वो पोइट्री एक्शन पोइट्री वो सुनाई बाबा के सामने। तो बाबा को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंग्लिश जानने वाली कुमारियों को बाबा जब देखते थे तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था, और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। तो बाबा के आगे जैसे वो पोइट्री सुनाई, कविता सुनाई, तो बाबा ने दूसरा वरदान दिया। बाबा ने कहा तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। हाँ, सेकंड दूसरा वरदान मिल गया, बाबा तुमको विदेश भेजेगा, जबकि विदेश क्या होता है पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन बाबा ने उसी समय आप सोचो ये वरदान दिया, क्योंकि बाबा तो भविष्य देखते थे, क्योंकि उस समय तो विदेश में कोई सेवा केंद्र भी नहीं था। लेकिन बाबा को ये जरूर बुद्धि में था कि बाबा के बच्चे विदेश में जाएंगे और सेवा करेंगे। तो ये दूसरा वरदान मिला। फिर मैं मधुबन में आई, तो मधुबन में मधुबन में ही थी, तो मधुबन में बाबा के साथ बहुत आनंद आया, क्योंकि उस समय थोड़ी पार्टियां आती थी, न कोई इतना बड़ा पांडव भवन था, इतने वो बाहर जो मकान है पांडव भवन के बाहर वो तो कुछ भी नहीं थे, अंदर ही था, कुछ बिल्डिंग्स भी नहीं थी। ये ट्रेनिंग सेक्शन जो शांति स्तंभ के सामने है वो भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं था, बस दो तीन बिल्डिंग्स ही थी और बाकी जमीन तो बहुत थी। तो उस समय मुझे याद है कि कैसे बाबा के साथ बैडमिंटन खेलते थे, जहाँ अभी शांति स्तंभ है वो खुला मैदान था, और वहाँ बाबा के साथ बैडमिंटन खेलते थे। बाबा सबके साथ खेलते थे बैडमिंटन, क्रिकेट भी खेलते थे वहाँ। तो वो भी मुझे याद है कि बाबा सदा जीतते थे, हम हार जाते थे, कितनी बाबा के अंदर शक्ति थी। तो हर एक के साथ बाबा खेलते थे, हर एक के साथ भोजन करते थे, हिस्ट्री हॉल में बाबा नीचे बैठ करके भोजन करते थे। तो सवेरे से लेकर रात्रि तक बस बाबा ही था। अभी तो हम लोगों के क्लासेस होते हैं, उस समय तो क्लासेस तो कोई थे नहीं, बस बाबा 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 अमृत वेला कराते थे, बाबा मुरली सुनाते थे, फिर मुरली सुनाने के बाद बाबा जैसे उठते थे तो कमरे में जाते थे, कमरे में जैसे जाते थे तो बच्चे उसके पीछे पीछे, बच्चे पीछे पीछे जाते थे, तो कमरे में भी बाबा की मुरली चलती थी ऐसे। तो जैसे बाबा की ज्ञान वर्षा जैसे सारा दिन होती थी, तो फिर बाबा के साथ एक बार भोजन भी होता था, खेल भी खेलते थे, रात्रि क्लास भी होता था, मानो कि बाबा ही सब कुछ था, बाबा से ही वो पूरी पालना ली। और मुझे याद है बाबा पत्र लिखते थे, तो 1967 में तो हम इंटर साइंस में थे, तो इंटर साइंस में ये डिसाइड करना था, क्योंकि साइंस में थे हम तो इंजीनियरिंग लाइन लेनी है या मेडिकल लाइन लेनी है, तो सब्जेक्ट्स दूसरे होते हैं। तो घर में तो यही सब कहे कि तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, घर में डॉक्टर कोई नहीं है और तो है, डॉक्टर चाहिए। तो मुझे तो मेडिकल पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें वो कॉकरोच काटना, मेंढक काटना, ये फिर तो मेडिकल में तो बॉडी को भी काटना होता है, डिसेक्शन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो मुझे पसंद तो नहीं था डॉक्टरी पढ़ना। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, बाबा ऐसे घर में मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं, मेडिकल लो, मेडिसिन में जाओ, MBBS के लिए अप्लाई करो, मैं क्या करूं बाबा। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि बाबा कोई जवाब देंगे, ये 67 की बात है, तब तो मैं मुश्किल से 18 साल की भी नहीं थी। तो बाबा का मुझे जवाब आया, बाबा हर एक को पत्र लिखते थे, हर एक को, अंतिम दिन भी बाबा ने सब पत्र पूरे किए, 18 जनवरी के दिन भी शाम को 4 बजे पोस्ट आई, वो भी बाबा ने पूरी की। यीशु दादी ने कहा बाबा आज शनिवार, शनिवार का दिन था, बाबा कल रविवार है, अब कल लिखना पत्र बाकी। बाबा ने कहा नहीं, आज ही सबके पत्रों के जवाब देने हैं। किसको पता था कि बाबा आज ही अव्यक्त होंगे। तो बाबा का लेटर आया हमें, और बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है, और बाबा चाहेंगे कि तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये साकार बाबा ने मुझे पत्र में लिखा। अब रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करना, ये तो हमारी इमेजिनेशन से, हमारी तो कल्पना से भी बाहर थे, कहाँ विश्व की सेवा और कहाँ तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो परंतु बाबा तो भविष्य जानते थे ना हर बच्चे का, तो ये मुझे वरदान मिला उस समय। तो हमने फिर यही निर्णय किया कि हम मेडिकल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ग्रेजुएशन करेंगे। इंटर साइंस था उस समय 11+2+2 था, अभी तो 10+2+3 है पढ़ाई में डिग्री तक, लेकिन उस समय 11+2+2 था। तो इंटर साइंस कंप्लीट की 67 में, तो घर से छुट्टी तो थी नहीं, हमको तो यही था मैं समर्पित हो जाऊं। लेकिन दादी जी, दादी प्रकाशमणि हमारी टीचर थे मुंबई में गामदेवी सेंटर पर, तो गामदेवी सेंटर पर दादी रहती थी और मैं वहीं जाती थी, कॉलेज भी जाती थी, तो वहीं जाती थी। तो दादी जी को मैंने कहा दादी मैं समर्पित होना चाहती हूँ, तो दादी ने कहा घर से पत्र लाओ। अब पत्र तो मुझे कोई देने को तैयार नहीं, क्योंकि बंधन था, कौन छुट्टी देगा, तो पत्र तो नहीं मिला, तो सेंटर पर कैसे रहेंगे हम। तो अभी मैं असमंजस में थी, क्या करूं क्या न करूं। तो फिर उस समय दीदी निर्मला, जो अभी पिछले साल ही उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वो, उनको बाबा ने कहा था, क्योंकि वो भी डॉक्टर थी, बहुत बड़ी उनकी क्लिनिक थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो बाबा ने उनको कहा कि आप बाबा की सेवा में लग जाओ। तो उनके पिता ने जो उनके लिए डाउरी के लिए रखा था पैसा, तो बाबा ने कहा कि अभी इससे तुम मकान लो, सेंटर बनाओ। तो जो कांदेवली का पहला सेंटर, वो हमारी डॉक्टर निर्मला को लौकिक पिता ने एक दहेज के रूप में दिया, जैसे नलनी बहन को भी मिला था वैसे ही था। तो उसमें बाबा ने कहा कुमारियों की ट्रेनिंग रखो, तो हम उसी कुमारियों की ट्रेनिंग में मैं गई थी, और इंटर साइंस में थी तब, 67 की बात है। तब निर्मला दीदी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो, बाबा ने हमको भी कहा कि तुम सेंटर खोलो, कन्याओं की ट्रेनिंग यहाँ कराओ, तो मैं तुमको कैसे कह सब कहूँगी कि तुम मेडिकल में जाओ, MBBS करो, मैं तो कभी नहीं कहूँगी। तुम बाबा की सेवा में तो ज़रूर हो ही, उसकी जगह तो ग्रेजुएशन कर लो, 2 साल ग्रेजुएशन कर लो। तो हमने कहा ठीक है। तो मानो कि हमने मेडिकल में तो नहीं गई, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने BSc किया। तो मुझे याद है मैं उन दिनों में मधुबन में आई थी, तो मधुबन में साकार में बाबा थे, तो इतना बाबा का प्यार मिला जो बस मुझे लगा मैं क्या पढ़ाई करूँगी, नहीं चाहिए मुझे कोई पढ़ाई। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें पढ़ना है। मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं मधुबन में रह जाऊँ, साकार बाबा को कहा, मुझे मुंबई नहीं पसंद, क्योंकि मुंबई मायावी नगरी है। मैं यही कहती थी, मुंबई मायावी नगरी, मुझे मुंबई में नहीं रहना है, मैं मधुबन में रहूं। तब साकार बाबा ने मुझे उसी समय वरदान दिया कि बच्ची अभी नहीं, तुमको पढ़ना है और पढ़ करके विश्व की सेवा करनी है, तो इसलिए मुंबई में तो अच्छे अच्छे कॉलेज है, पढ़ाई है, अब वो तो गाँव है, गाँव में क्या होगा, नहीं तुम पढ़ाई पूरी करो तो बाबा तुमको मधुबन में रखेगा। ये साकार बाबा का वरदान था। देखो कहाँ वो वरदान मुझे उस समय मिला, और फिर ड्रामा अनुसार कैसे मधुबन में मेरा रहना हुआ। तो मैं मधुबन में अभी 50 साल से मधुबन में हूँ, तो आप सोचो। तो बाबा की पालना मिली, मम्मा की पालना मिली, मम्मा की भी गोद ली। मम्मा तो 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, लेकिन मैं तो 60 में ही ज्ञान में आ गई, और मम्मा भी मुंबई में आती थी। मम्मा भी हमको बहुत प्यार करती थी, मम्मा तो छोटे थे तो बच्चों को तो वैसे ही प्यार करते हैं मम्मा बाबा। तो खैर मम्मा की भी बहुत पालना मिली, वरदान मिले, और 69 में जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, मैं कुलाबा में रहती थी बॉम्बे में, तो कुलाबा सेंटर पर हम जाते थे, पढ़ाई करते थे, कॉलेज में थी, लास्ट ईयर था BSc का, तो हम सेंटर पर जाते थे और वहाँ कोर्स भी कराते थे। म्यूजियम है कुलाबा सेंटर में, तो वहाँ म्यूजियम भी समझाते थे और लेक्चर्स होते थे, वो भी कराते थे, सब कुछ करा करके फिर घर जाते थे कॉलेज से आकर के। तो 18 जनवरी के दिन शनिवार की शाम थी, और मैं तो सब वो करके 8 बजे घर गई, लौकिक घर भी मेरा पास में ही था, तो मैं घर गई। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था, अगले दिन तब माना ये 18 जनवरी की रात को तो बाबा व्यक्त हुए, तो मैं 8 बजे घर गई, और सवेरे संडे था, रविवार का दिन था, तो रविवार को तो बहुत भाई बहन आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं सवेरे सेंटर पर गई 19 जनवरी, तो मैंने देखा कि 2-4 लोग बैठे हैं केवल, और दादियाँ सब रहती थी बॉम्बे में ही रहती थी, दादी पुष्प शांता थी, दादी आत्म मोहिनी थी, सब दादियाँ, कितनी दादियाँ बॉम्बे में रहती थी। तो मैंने देखा कोई भी दादी नहीं, बस सब योग चल रहा है। तो मैंने किसी से पूछा जो वहाँ माता थी एक, मैंने कहा कहाँ चले गए सब, क्योंकि संडे बाना बहुत सेंटर पर आते हैं, कहाँ चले गए? तो उस माता ने धीरे से कहा कि कल रात को बाबा अव्यक्त हो गए हैं और सब माउंट आबू चले गए हैं, सब माउंट आबू गए हैं। 18 रात को ही माउंट आबू, क्योंकि रात को भी ट्रेन जाती थी बॉम्बे से आबू, तो सब चले गए। कोई टैक्सी से गए, कोई अपनी गाड़ी से गए, कोई बस से गए, कितने गए, माउंट आबू गए। तो इसलिए सेंटर पर कोई भी कुछ थोड़े से थे। और जैसे ही मैंने सुना कि बाबा अव्यक्त हो गए, बाबा ने शरीर छोड़ा, बस उस समय तो मेरी ऐसी दशा हुई, मेरे पांव कांपने लगे, ऐसे जैसे पांव हाथ पांव कांपने लगे। और उसी समय मैंने ये सोचा कि बस बाबा गए माना विनाश, अभी विनाश होगा, ऐसे मैंने समझा। इतना मैंने कहा बाबा चले, बाबा शरीर छोड़ा, बस अभी ये धरती फटेगी, आकाश नीचे आएगा, पता नहीं क्या क्या मैंने उस समय सोच लिया कि पता नहीं अभी क्या होगा, दुनिया खत्म, बाबा चले गए माना दुनिया खत्म, बस यही अंदर में सोचा। तो फिर उसी समय मैंने एक अनुभव किया। मैंने क्या अनुभव किया कि ब्रह्मा बाबा फरिश्ता के रूप में मेरे सामने आए, एकदम एंजल फॉर्म में, लाइट फॉर्म में, और मेरे सामने आकर के मेरे सिर पर हाथ रखा और बाबा ने कहा, बच्ची बाबा गए नहीं है, बच्ची बाबा बच्चों के साथ है और बच्चों से मिलने आते रहेंगे, ये बाबा ने कहा। तो फिर जाकर के थोड़ा सांस में सांस आई, जो ये मैंने अनुभव किया कि बाबा आते रहेंगे, बच्चे बाबा बच्ची बाबा गए नहीं है। तो हमने तो सोचा बस बाबा चले गए माना विनाश। खैर फिर तो पता चला कि 21 जनवरी को सबसे पहली मुरली चली, क्योंकि बॉडी को रखा गया था 18 जनवरी रात को, बाबा ने लगभग 9:15 बजे शरीर छोड़ा, 9:15 के बीच में। और जैसे बताया उनकी जो आखिरी महावाक्य थे, बच्चे सदा निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनो, जो अभी क्लास आपका कराया गया, डॉक्टर सविता ने कराया। और बाबा कमरे में चले गए, और कैसे दादी जी वहाँ गए, और बस दादी जी ने बाबा का हाथ पकड़ा तो दृष्टि और हाथ से जैसे सारी शक्ति बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी को दे दी। तो उसके बाद तो दादी प्रकाशमणि तो मुंबई में रहती थी, हमारी टीचर थी, हम तो यही कहेंगे, ये भी मेरा सौभाग्य था कि दादियों की हमने कितनी पालना ली। तो फिर दादी तो मधुबन में रहने लगी, और गुलजार दादी वतन में जाती थी, दादी गुलजार तो दिल्ली में रहती थी, तो मधुबन में आई और वतन में जाती थी। तो बॉडी को तो रखा था 2.5 दिन, रात को 9 बजे लगभग 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, 19 सारा दिन, 20 सारा दिन, 21 तारीख को दिन में अंतिम संस्कार किया गया था। तो हमारी बड़ी दीदी जी जो मधुबन में रहती थी, वो उस समय इलाहाबाद गई हुई थी, वहाँ कुंभ मेला था, तो वहाँ गई हुई थी। तो वो जब तक वापस आए तब तक बॉडी को 2.5 दिन रखा था, और उसके बाद जब अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ शांति स्तंभ है वही बाबा की समाधि है, वहाँ ही अंतिम संस्कार किया गया। और फिर 21 तारीख शाम को अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में आए, क्योंकि वो नंबर 1 ट्रांस मैसेंजर थी गुलजार दादी। कुछ भी होता था बाबा गुलजार दादी को ही कहते थे, जाओ बाबा से पूछ के आओ। तो गुलजार दादी सबसे पहली आत्मा थी जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा का साक्षात्कार किया, साकार में, यज्ञ में। यज्ञ में दादी गुलजार दादी, हृदय मोहिनी दादी ने किया। तो वो तो ऐसे बैठी थी बाबा की याद में, अचानक, क्योंकि शुरू से पहले दिन से दादी गुलजार का साक्षात्कार का पाठ हुआ, पहले दिन से। जिस दिन वो आई, 9 साल की थी केवल, अपनी माँ के साथ आई यज्ञ में कराची हैदराबाद सिंध में। और जैसे ही वो यज्ञ आई, बाबा सत्संग कराते थे, तो वो जैसे ही पहुंची और बाबा की उसको दृष्टि मिली, तुरंत वो ध्यान में चली गई उस समय, और ध्यान में जाकर श्री कृष्ण का अनुभव किया था। तो वो बहुत ट्रांस में जाती थी बचपन से। तो दादी हृदय मोहिनी गुलजार दादी वही पहली आत्मा थी जिसने अव्यक्त बाप दादा का साक्षात्कार किया। बाबा साकार में थे, लेकिन उसने ध्यान में देखा सूक्ष्म वतन, क्योंकि सूक्ष्म वतन का अनुभव उसके पहले किसी ने नहीं किया था। स्वर का साक्षात्कार बहुत करते थे, परम धाम का साक्षात्कार करते थे, विनाश का साक्षात्कार करते थे, धर्मराज पुरी का साक्षात्कार बहुत होते थे यज्ञ के अंदर 14 साल, लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किसी ने नहीं किया था। और गुलजार दादी सबसे पहली आत्मा थी जिसने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया, और साकार ब्रह्मा का वो अव्यक्त रूप सूक्ष्म वतन में देखा। तो जैसे वो ध्यान में गई पहली बार, तो वो तो आकारी जो प्रकाश में ब्रह्मा बाबा को देखा, वो तो डर गई। हाँ, जैसे कोई लाइट में बाबा का आकार देखा तो वो डर गई और एकदम से नीचे आ गई। तो नीचे आकर के पूछा तो बाबा को कहा, बाबा तो किसी उसने मामा को कहा कि मामा मैंने ऐसे बाबा का ऐसे लाइट में हमने आकार देखा, और एकदम सफेद 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 चांदनी लाइट में वो एक दुनिया देखी, तो हमको समझ में नहीं आया क्या है, मैं तो डर गई और मैं बाहर नीचे आ गई, छोटी थी। तो मामा ने कहा ये बाबा को जाके बताओ। तो बाबा के पास गई यज्ञ में कि बाबा ऐसे ऐसे मैंने देखा। तो बाबा ने उनसे पूछा, अच्छा तो आपने उनसे पूछा नहीं या कि आप कौन हो, पूछा नहीं? तो कहा नहीं, मैं तो डर गई। तो बाबा ने कहा अभी फिर से बैठो और फिर से देखो, आपको अनुभव होगा, और उनसे पूछो कि आप कौन हो, आप कौन हो। तो फिर गई ध्यान में और वही सूक्ष्म आकार ब्रह्मा बाबा का देखा और उनसे पूछा आप कौन हो। तो बाबा ने उनको अनुभव क्या कराया, बाबा ने उनको कहा कि ये ब्रह्मा जो साकार में है यही अव्यक्त बनेगा, तो वो साकार ही ये अव्यक्त बनेगा, माना ये अव्यक्त रूप वो ही बनेगा, तो वो अव्यक्त रूप हूँ मैं, और ये बात आप जाकर साकार ब्रह्मा बाबा को बताओ कि तुम्हारा अव्यक्त रूप सूक्ष्म वतन में है और तुम संपूर्ण बन करके ये बनोगे। तो ये बाबा को भी तब पता चला कि मेरा संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में है और वो मुझे जाके बनना है। बस उसके बाद तो बाबा की लगन ही लग गई, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। तो कई बार बाबा दादी गुलजार को कहते थे कि जाके देख के आओ कि मैं संपूर्ण बनने से कितना दूर हूँ, कितना दूर हूँ, कहाँ ये साकार रूप और कहाँ ये अव्यक्त रूप, कितना दूर हूँ। तो दादी बताती थी कि बाबा धीरे 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 आप नजदीक आ रहे हैं, आप नजदीक आ रहे हैं, आप साकार रूप अव्यक्त रूप के नजदीक आ रहा है। और जिस समय बाबा अव्यक्त हुए, फिर वो ट्रांस में गई, बॉडी डेड बॉडी वही था, सब बाबा का पार्थिव शरीर वही था, और वो ध्यान में गई तो देखा कि दोनों रूप एक हो गए, साकार रूप और अव्यक्त रूप, मानो अव्यक्त रूप। और बाबा ने कहा कि मैं गया नहीं हूँ, मैं गया नहीं हूँ, केवल कपड़ा और कमरा चेंज किया है, कपड़ा और कमरा। कपड़ा कौन सा? साकारी चोला छोड़कर अव्यक्त चोला पहना है, क्योंकि वो भी तो चोला है ना, लाइट का शरीर, अव्यक्त चोला पहना है और साकारी वतन छोड़कर अव्यक्त वतन के कमरे में गया हूँ, नेक्स्ट रूम, जैसे ये नेक्स्ट रूम हो गया दूसरा कमरा, तो कपड़ा कमरा और कपड़ा बस यही बदला है, बस बाबा गए नहीं है, ये अनुभव बाबा ने कराया। और फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा आएंगे, बच्चों से मिलेंगे, और बाप और दादा कंबाइंड हो गए। अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से अलग नहीं, वो कंबाइंड हो गए, क्योंकि बाप समान हो गए, ये नहीं कि आत्मा परमात्मा बन गई। उस दिन भी बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा नहीं बनती है, परमात्मा तो सदा ही परम पिता है, आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन वो देव आत्मा संपूर्ण आत्मा अवश्य बनती है। तो अब दोनों जैसे साथ में है, कंबाइंड फॉर्म में है, जुड़ गए हैं ऐसे। तब बाबा ने कहा कि बच्चों से मिलने आएंगे, और जब अंतिम संस्कार हो गया 21 तारीख को शाम को, बाप दादा गुलजार दादी के तन में आए, वो ट्रांस में गई, पर पहले कुछ पता नहीं था क्या होगा, बस दादी जी ने गुलजार दादी को कहा, क्योंकि जो भी शरीर छोड़ते उसके बाद भोग लगाते हैं, तो बाबा को, बाबा का आह्वान किया कि बाबा आकर के मिले हमसे। तो कैसे, अब जब जैसे वो वतन में गई, नहीं तो वतन में तो वैसे ही जाती थी लेकिन वापस आ जाती थी और फिर संदेश सुनाती थी, लेकिन जब 21 तारीख को जब वो वतन में गई और वतन से फिर जैसे देखा, तो आंखें, नहीं तो जब वो आती थी तो सीधा आंखें खुली और सुनाती थी माइक पर, लेकिन पहली बार जो अनुभव हुआ, तो जैसे ही आंखें खुली तो धीरे 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 आंखें खुली, धीरे धीरे बना समथिंग डिफरेंट, अलग चीज थी, धीरे धीरे आंखें खुली और फिर दृष्टि देने लगे, क्योंकि बाप दादा उनके तन में प्रविष्ट हुए थे, और फिर दृष्टि देने लगे, बहुत लंबे टाइम तक दृष्टि मिली, और फिर माइक जब रखा तो बहुत धीमी आवाज, क्योंकि माइक के बिना तो कुछ भी सुनाई नहीं देता, वो धीमी आवाज एकदम जैसे कोई होंठ ही हिल रहे हो बस, जैसे कोई नजदीक में उनसे केवल बात करे, केवल वो ही सुने, दूसरा कोई सुन न सके, तो इतनी धीमी आवाज। तो जब माइक रखा तो आवाज जो धीमी थी उसको बड़ा करते हैं एम्पलीफायर से, तो वो आवाज जैसे टूटी हुई फटी हुई आवाज वो आती है, इसको वो आवाज उस रूप में था, तो मानो बिल्कुल ही अलग आवाज, गुलजार दादी की आवाज नहीं, पर वो दूसरी प्रकार की आवाज, जो पतली आवाज को बड़ा किया जाए तो वो आवाज थी। और बाबा की मुरली चली, जिसको हम कहेंगे पहली अव्यक्त मुरली, 1969 21 जनवरी। किसने पढ़ी है वो मुरली, किसने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, देखो थोड़े ही हाथ उठा रहे हैं, जाकर के पढ़ना, किताबें तो बहुत है अव्यक्त मुरलियों की, किताबें 69-70 की भी किताबें हैं, अभी तो इतनी बड़ी पुस्तक भी आ गई जिसमें कितनी 10 साल की अव्यक्त मुरलियां हैं, कितनी अव्यक्त मुरलियां चली है, मानो 47 साल अव्यक्त पालना हमें मिली है इन मुरलियों की, तो देखो वो कोई कम पालना नहीं है। तो जब 21 तारीख को बाबा आए तो उसके बाद दादी जी तब वहीं थे, तो बाबा ने दीदी और दादी के सिर पर कैसे हाथ रखा, दोनों के सिर पर, दीदी तो मधुबन में रहती थी, दादी तो मुंबई में रहती थी, तो दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अभी ये दोनों आगे इस यज्ञ को चलाएंगे, और मुरली में सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि शिव परमात्मा, शिव बाबा अभी गुप्त हो जाएंगे और शक्तियां प्रत्यक्ष होंगे, शिव गुप्त हो जाएंगे, शक्तियां प्रत्यक्ष होगी। फिर बाबा ने कहा सूर्य और चांद, क्योंकि शिव बाबा सूर्य और ग्रह और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा ये तुम्हारे बैकबोन रहेंगे, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये रीढ़ की हड्डी है, और आगे दीदी और दादी ये दोनों रहेंगे, और शिव बाबा और संपूर्ण ब्रह्मा इनके द्वारा कैसे कार्य कराएंगे। तो मानो दादी और दीदी ने, दादी प्रकाशमणि ने 38 वर्ष तक एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, 1969 से लेकर 2007 तक 38 वर्ष दादी प्रकाशमणि, और दीदी मनमोहिनी थी, तो दीदी मनमोहिनी वे 65 में वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी मम्मा के बाद, और 65 से लेकर के 1983 मम्मा दीदी ने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन उसके बाद दादी जी थे, पर दीदी और दादी इन दोनों ने मिलकर के इस यज्ञ को दिन दुगनी रात चौगनी गति से इतना आगे बढ़ाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि उसके बाद कैसे विदेशों में सेवा केंद्र खुले, और जो साकार में बाबा कहते थे वो सब प्रैक्टिकल में होने लगा। क्योंकि साकार में बाबा कहते थे बच्चे माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, अब उस समय तो सोचते थे ये क्यों क्या लगेगी, अभी तो कितने थोड़े लोग आते हैं, क्यों कैसे लगेगी, बच्चे आबू सारा तुम्हारा हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं ना चारों ओर कितने बीके कॉलोनी बन गई है, क्या क्या बन गया है, क्या क्या बाबा के अलग अलग के कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं यहाँ पर ही सब जगह। तो देखो उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि साकार बाबा के दिनों में बाबा बहुत गुप्त थे, बहुत गुप्त, कभी बाबा ने बड़ी सभाओं में भाषण नहीं किया, कभी नहीं किया, जैसे और साधु संत महात्माएं करते हैं ना, कितनी सभा बड़ी होती है, इतने बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, बाबा के दिनों में नहीं। बाबा हमेशा कहते थे बाबा तो अपने बच्चों से ही मिलते, बॉम्बे जाते थे ट्रेन से, कभी फ्लाइट में नहीं गए, प्लेन व्लेन में नहीं गए, मम्मा तो फिर भी चढ़ी थी प्लेन में, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं गए कभी भी। तो कैसे बाबा कहते थे मुंबई आते थे बाबा बच्चे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आए, फूल वूल नहीं ले आना, बिल्कुल सिंपल, कोई स्वागत के लिए फूल मालाएं गुलदस्ते ले आते ना, बाबा बिल्कुल मना करते थे बच्चे खर्चा नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, बाबा तो गुप्त है और गुप्त ही रहेंगे। तो साकार बाबा तो सदा गुप्त ही रहे, और जैसे साकार बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद सेवाएं वृद्धि को पाई, और बाबा ने उस मुरली में कहा कि अभी तक जो सेवाएं थी वो चीटी मार्ग की सेवाएं थी, और अभी जो सेवाएं होगी वो विहंग मार्ग की सेवाएं होगी। तो अभी हम देख रहे हैं विहंग एक पक्षी होता है, वो विहंग मार्ग की सेवाएं। और दीदी और दादी, हाँ जैसे बाबा कहते हैं दो हंसों का जोड़ा थे, जो दीदी ने कहा वही दादी ने कहा, दोनों ने मिल करके कैसे इस यज्ञ को संभाला, और कितने विदेशों में सेवा केंद्र खुल गए। तो 83 में ओम शांति भवन बन करके तैयार हुआ था, और दीदी उन्हीं दिनों में ही वो पहली कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके दीदी मुंबई में गई, और वहाँ ही उनकी उनका वहीं पर उन्होंने शरीर छोड़ा। लेकिन दादी प्रकाशमणि जी के साथ फिर दादी चंद्रमणि, दादी जानकी, ये सब दादियाँ थी, और कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो अव्यक्त बाप दादा आते थे मिलन मनाने के लिए, तो पहले तो हिस्ट्री हॉल में आते थे, गुलजार दादी नीचे ही बैठते थे, कोई गद्दी पर भी नहीं बैठते थे, नीचे या हिस्ट्री हॉल में अपना ये खिड़की है, उस खिड़की के नीचे ही गद्दी लगाते थे और वहीं बाप दादा आते थे और मिलते थे इतना नज़दीक में। तो वो भी मैंने बहुत अनुभव किया कैसे बाप दादा बच्चों से मिलते, सारी सारी रात मिलते थे बाबा, सारी सारी रात आप समझ सकते हैं। शाम को 6:30 बजे गुलजार दादी आती थी, गद्दी पर बैठती थी, वतन में जाती थी और उसके बाद अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि होती थी उनके तन में, और फिर मुरली चलाती थी, चलाते थे बाप दादा, और फिर ग्रुप से मिलते थे, फिर इंडिविजुअल मिलते थे, एक एक से बाबा मिलते थे, एक एक से एक एक को वरदान देते थे। तो वो भी पालना हमने बहुत पाई और बहुत वरदान बाबा से इंडिविजुअल रूप में भी लिए। पहला वरदान तो बाबा हमेशा मुझे यही देते थे, बच्चे तुम अथक सेवा करती हो, अथक सेवा करती हो। फिर बाबा ने दूसरा वरदान दिया, बच्ची दिल से सेवा करती हो, दिल से सेवा करने वालों का हम का दिल को तीर लगता है, ऐसे बाबा की बहुत चलता चल मुरलियाँ चली। तो मैं तो उसके बाद तो 69 में तो फिर जैसे बाप दादा ने अव्यक्त बाबा ने कहा यहाँ, क्योंकि ये दादी ने बाबा से पूछा बाबा अभी यहाँ क्या कर कौन आएंगे, बाबा ने कहा बहुत आएंगे, यहाँ बठिया शुरू करो, ट्रेनिंग शुरू करो। तो कुमारियों की ट्रेनिंग, माताओं की ट्रेनिंग, कुमारों की ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग, ये सब पांडव भवन में शुरू हुआ। और फिर तो पहली जो ट्रेनिंग हुई कुमारियों की 69 में, उस ट्रेनिंग में कैसे अव्यक्त बाप दादा ने, दादी जी ने सब दादियों को बुला लिया वापस। जब यज्ञ से यहाँ भारत में आए 1950 में, तो उसके बाद बाबा ने सब साकार बाबा ने दादियों को अलग अलग स्टेट्स में भेजा, अलग अलग जगह भेजा, कितने सेवा केंद्र खुल गए। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादियों को दादी जी ने वापस मधुबन में बुला लिया और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में वो दादियां भाग लेती थी। मानो साकार बाबा जब थे तो हमारी दादियों को तो बहन ही बुलाते थे, मनोर दादी ने कहते थे मनोर बहन, ऐसे बुलाते थे। लेकिन क्योंकि बाबा थे मम्मा थी तो दोनों होने के कारण दादियां तो अपने आप को बहन ही समझती थी। ये तो बाद में दादी 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 शब्द कहना शुरू किया, दीदी, ये दीदी और दादी। पहले हमारी दो दीदी और दादी थी, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि, दोनों हंसों का जोड़ा। फिर उसके बाद कैसे हमारी दादियों में वो बाप समान गुण आ गए और कैसे उन्होंने पालना की। लेकिन बाप दादा तो बैकबोन थे ही, तो फिर देखो अव्यक्त बाप दादा से मिलना होता था। और मेरा ये सौभाग्य है कि कैसे सारी सारी रात हम बाबा के पास बैठते थे और बाबा एक एक से मिलते थे और बाबा के हाथ में टोली देती थी मैं और वो टोली हर एक को मिलती थी। ये भी मेरा सौभाग्य था सारी सारी रात। और फिर डबल विदेशियों की बहुत सेवा हुई, बाबा डबल विदेशियों पर कितनी मेहनत करते थे। आज 140 देशों में जो बाबा के सेंटर्स हैं और डबल विदेशी इतने कैसे कार्य कर रहे हैं विदेशों में, ये अव्यक्त बाप दादा की पालना उनको मिली है। क्योंकि बाबा साकार में कहते थे बहुत विदेशी आएंगे, डबल विदेशी या उस समय विदेशी कहते थे आएंगे, और भारत में भारत के जो कुंभकर्ण है ना उनको जगाएंगे। आप साकार मुरलियों में देखते होंगे ना, सुनते हैं, तो सचमुच हम देख रहे हैं कैसे ये डबल विदेशी जब मधुबन में आते हैं, यहाँ पर अन्य अन्य स्थानों पर सेवाएं करते हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं आप लोग वेजिटेरियन हो? वो कहते हाँ बिल्कुल वेजिटेरियन है, हम शराब नहीं पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो वो भारत वाले आश्चर्य खाते हैं, भारत वाले नहीं कर पाते, विदेशी करते हैं। तो देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सचमुच हम अनुभव करते हैं। तो बाबा से तो हमें बहुत पालना मिली। और मुझे याद है दादी जी ने मुझे 69 के बाद तो दादी ने मुझे बॉम्बे में रखा, मैंने कहा मुझे मुंबई में नहीं रहना है, तो दादी ने मुझे बेंगलोर भेजा, काठमांडू भेजा, हैदराबाद भेजा, कई जगह पर हम रहे एक एक साल। फिर 1974 में विदेश भेजा, अफ्रीका में भेजा, अभी 74 में विदेश में पहले जाना हुआ, अफ्रीका की सेवाएं शुरू हुई। तो अभी पिछले साल ये 2024 में 50 साल अफ्रीका की सेवाओं का मनाया। फिर मॉरिशियस में सेवाएं शुरू हुई, और फिर 76 में दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा। दादी ने कहा अभी यहाँ विदेशी आएंगे और यहाँ शिविर शुरू होगी, तो राजयोग भवन में शिविर शुरू हुई। और विदेश के भाई बहने भी आते थे, तो ये सेवाओं के लिए दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा। तो मैं मधुबन में रहने लगी, तो मुझे याद है अव्यक बाप दादा का बहुत सुंदर वरदान मुझे मिला। जब मैं मधुबन में रहने लगी थी तो दादी जी ने मेरे से पूछा, तुम कौन सी गंगा हो? सॉरी, अव्यक बाप दादा ने मेरे से पूछा, तुम कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो वो टीचर बहने हैं, हाँ वो तो सभी है ज्ञान गंगाएं, क्योंकि सब ज्ञान सुनाते हैं, तो वो तो है, लेकिन आप कौन सी गंगा हो? तो ज्ञान गंगा, तो फिर मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ, मैंने ये कहा। तो बाबा ने कहा बहती गंगाएं तो वो टीचर बहने हैं जो सेंटरों पर रहती है, क्योंकि उस समय तो जो बहने सेंटर्स पर रहती थी वो कोई परमानेंट नहीं होती थी कि वहीं रहना है, उनको दादी जी भेजती थी दूसरे सेंटर पर जाओ, फिर तीसरे सेंटर पर जाओ, तो वो तो कोई एक सेंटर पर फिक्स नहीं होती थी। तो वो बहती गंगाएं थी, आज इस सेंटर पर, कल उस सेंटर पर, कल उस सेंटर पर, क्योंकि अलग अलग जगह सेवा होती थी, तो वो तो बहती गंगा थी। अब मैं तो मधुबन में रहती थी, तो फिर बाबा ने पूछा कि वो तो बहती गंगाएं तो सेंटर पर रहने वाली टीचर्स है, आप कौन सी गंगा हो? अब तीसरी गंगा का नाम तो मुझे आई नहीं। तब बाबा ने मुझे कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। हर की पौड़ी है ना, हरिद्वार में हर की पौड़ी है, पता है ना? तो वहाँ हर की पौड़ी में तो सारी दुनिया नहाती है, सब साधु संत महात्माएं भी वहाँ पर अपना पांव डालते हैं हर की पौड़ी पर, क्योंकि उस समय वो हर की पौड़ी पर जो गंगा आती है वो गंगोत्री से चलती हुई, पहाड़ों से चलती हुई प्लेन्स पर आती है। तो हरिद्वार प्लेन पर है और वहाँ पर वो गंगा नदी है, तो हर की पौड़ी। तो बाबा ने उस समय ये वरदान दिया कि हर की पौड़ी पर सारी दुनिया नहाती है, तो सारी दुनिया तुम्हारे में आकर के नहाएगी, ये बाबा ने वरदान दिया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि बाबा ऐसे कहेंगे, लेकिन इतना सुंदर वरदान मिला। फिर तो कई वरदान मिले, लेकिन एक और वरदान जो बहुत ही सुंदर, जो कभी मैं भूल नहीं सकती हूँ, मैं हैदराबाद गई थी, तो हैदराबाद में नागार्जुना फर्टिलाइजर्स को का वो प्रोग्राम था, वहाँ उनके एग्जीक्यूटिव्स थे, तो वो प्रोग्राम करके मैं वापस आई थी। और थोड़े समय के बाद वो एग्जीक्यूटिव नागार्जुना फर्टिलाइजर्स के वो मधुबन आए थे बाबा से मिलने, वो हिंदी नहीं जानते थे, इंग्लिश, तो बाप दादा का ट्रांसलेशन मैंने उनको किया इंग्लिश में। तो जब उनका पूरा हुआ तो उसके बाद मैं बाबा के सामने गई टोली लेने के लिए, तो बाबा ने मेरे हाथ में टोली रख करके मुझे इतना सुंदर वरदान दिया अव्यक्त बाप दादा ने कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जिबान पर है, ये बाबा ने कहा। तो मैं तो हैरान हो गई, ऐसा वरदान। लेकिन उसके बाद मेरा संकल्प चलने लगा कि भगवान ने इतना बड़ा वरदान दे दिया कि सरस्वती आपकी जुबान पर है, इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब मैंने निकाले। एक मतलब निकाला कि बाबा को मुझसे और बड़ी सेवा करवानी है, और दूसरा मतलब निकाला कि जरूर अगर सरस्वती जुबान पर है तो इस मुख से कोई अपशब्द, कोई बुरे शब्द, कोई नकारात्मक शब्द, किसी को दुख देने वाले शब्द कभी नहीं निकल सकते। केवल ज्ञान ही इस मुख से निकलना है, बस और कुछ नहीं। तो ये वरदान मिला, लेकिन क्या बाबा को मुझसे करवाना है वो पता नहीं था। और थोड़े समय के बाद 93 की ये बात है, जो प्राइवेट चैनल्स चालू हुए टीवी में, और जब गवर्नमेंट चैनल तो दूरदर्शन है, उसमें तो कोई किसी संस्था को तो देते नहीं है, केवल गवर्नमेंट की बातें या राजनीति की बातें हैं। लेकिन प्राइवेट चैनल शुरू हुए तो सबसे पहला प्राइवेट चैनल जी टीवी आया, तो जी टीवी में ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला, और उस समय कैसे बाबा ने मुझे भेजा कि आप वो जी टीवी में वैल्यूज के ऊपर, मूल्यों के ऊपर लेक्चर्स देना है। तो बाबा का ये कार्य शुरू हुआ, तो जो सबसे पहले टेलीविजन के प्रोग्राम हुए, 93 की बात होगी, तो देखे होंगे जिन्होंने उस समय टीवी पर हमारे प्रोग्राम देखे, वो हाथ उठाओ। हाँ, थोड़े से हैं, थोड़े से देख, परंतु बहुत आए उस समय और बहुत एपिसोड किए। फिर सोनी टीवी, आस्था चैनल, संस्कार चैनल, इन सब में आध्यात्मिक प्रवचन आते रहे हैं। तो देखो बाबा का इतना बड़ा कार्य हुआ। उसके बाद तो अपने ही दो चैनल्स हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल और अवेकनिंग चैनल, उसी में बाबा के सारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं। तो कैसे बाबा की ये सेवाएं अव्यक्त रूप में अब चल रही है। तो 2017 तक तो अव्यक्त बाप दादा का मिलन हुआ, फिर उसके बाद तो हम कहेंगे कि हम अभी निराकारी रूप में, बाबा कहते मेरे समान बन जाओ। इसीलिए अभी जो अव्यक्ति इशारे आ रहे हैं वो भी तो यही कह रहे हैं, कैसे हम अव्यक्त बाप दादा के समान बने, कैसे संपन्न बने, संपूर्ण बने, यही हमारी फिर निराकारी पालना है। तो साकारी पालना का भी अनुभव, अव्यक्ति पालना का भी अनुभव, और अभी बाप समान बनना है, बस यही सबका लक्ष्य है। है ना सबका यही लक्ष्य? सबका यही लक्ष्य है ना? बिल्कुल। ब्राह्मण तो बन गए, ब्रह्मा मुख वंशावली तो कहलाते हैं, लेकिन अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, फिर घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। नई दुनिया में भी छोटा मोटा पद नहीं पाना है, क्या बनना है? विश्व महाराजन, विश्व महारानी, इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के हमारे जीवन की धारणाएं हो, तो बस बाबा का नाम रोशन करेंगे और बाबा की जय जयकार हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करें।
तेरी पास।